नमस्कार जोहार श्रोताओं, किताब के पन्नों से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक और हम सुन रहे हैं किताब के पन्नों से कार्यक्रम में महान नीतिकार चाणक्य की कहानी। इस कहानी के हमारे साथ बांटा है हमारे श्रोता संजीव कुमार बहार ने। श्रोताओं, आज हम सुनेंगे कहानी की दूसरी कड़ी। चलिए सुनते हैं, जब चाणक्य मगध नरेश की सभा में पहुंचते हैं तो सभा का माहौल क्या बनता है।
मैं संजीव कुमार भार, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, महान नीतिकार चाणक्य भाग 2। महाराज नंद अपने युग के सबसे बड़े वीर और महान राजाओं में से एक थे। उनके दरबार में जैसे ही चाणक्य एक कुर्सी पर विराजमान हुए, आसपास के सभी लोगों ने उन्हें बहुत आश्चर्य से देखा। ब्राह्मणों के साथ यह काला कुलोता बदशकल सा ब्राह्मण बैठे देखकर सब हैरान थे। हैरान तो थे ही, किंतु उसमें कोई नहीं बोला, क्योंकि राजा जी के आने का समय हो चुका था। राजा नंद अपने हाथों से ही सुबह के समय पुरोहितों को दान देते थे। जैसे ही वे दरबार में आए, ब्राह्मणों की ओर एक नजर डालते हुए श्रद्धा से देखा। पुरोहित ने राजा जी से उठकर कहा, महाराज, ब्राह्मण लोग आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, दान के लिए आप अपना हाथ बढ़ाएं। बस ब्राह्मणों को दान देना हमारा धर्म है, हम दानी पुरुष हैं। इतना कहते ही राजा नंद ने सामने बैठे ब्राह्मणों की ओर जो देखा, दान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उनकी नजर सामने बैठे चाणक्य पर पड़ी। यह काला कलुटा बेढंगा वत्सक क्रूर इंसान कौन बैठा है? राजा क्रोध से चीख उठे। यह चाणक्य पंडित है महाराज। नहीं नहीं, ऐसा भयंकर और वत्सक काला आदमी कभी पंडित नहीं हो सकता। इसे मेरे सामने से हटा दो और धक्के देकर मेरे दरबार से निकाल दो। मैं इसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। महाराजा नंद के मुंह से ऐसे सब सुनकर चाणक्य में आंखें अंगारे उगलने लगी थी। क्रोध के मारे उनका सारा शरीर कांपने लगा था। वह उछलकर अपने स्थान से उठे और महाराज नंद की ओर घृणा से देखते हुए ग्रस्त कर कहा, अरे शूद्र, तुम अपनी ताकत और भोग विलासी जीवन के कारण अंधे हो गए हो। तुमने आज तक ब्राह्मण का खुलेआम अपमान किया है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस समय आपका मेहमान हूँ? हमारे धर्म शास्त्र में मेहमान को भगवान का रूप बताया गया है। बकवास बंद करो, मैं सम्राट नंदपाल सिंह हूँ। मेरे सामने जवान खोलने की सजा मौत से कम नहीं। यदि तुम ब्राह्मण ना होते तो यह काम अब तक हो चुका होता। अब तुम निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें निकालने के लिए मुझे सैनिकों का सहारा लेना पड़ेगा। राजा नंद, तुमने एक ब्राह्मण और साथ में मेहमान का भी अपमान किया है। मैं विष्णुगुप्त चाणक्य आज अपनी बनी हुई चोटी को खोलकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक नंदज वंश का नाश न कर लूँ, तब तक न तो यह चोटी बांधूंगा और न ही चैन से बैठूंगा। क्रोध से भरे चाणक्य यह शब्द कहते हुए सम्राट नंद को घृणा की दृष्टि से देखते हुए बाहर निकल गए। ब्राह्मण जीवन भर कष्ट तो सहन कर सकता है, किंतु अपना अपमान कभी नहीं सहन कर सकता। विशेष रूप से जब उसकी पूरी जाति का ही अपमान किया जाए, तो उस समय यह संसार का सबसे भयंकर इंसान बन जाता है। सम्राट नंद के सभी बड़े बड़े सैनिक अधिकारी जानते थे कि वे क्रोध में आकर सारे संसार का विनाश करने की शक्ति रखते हैं। इस काले ब्राह्मण ने महाराज का खुलेआम अपमान किया है, अब इसको जान बचानी बहुत कठिन है। राज दरबार में चारों ओर एक भयंकर सन्नाटा छा गया था। लोगों के दिलों की धड़कनें तेज थी, किंतु जवानी खामोश थी। आंखें कभी राजा के चेहरे पर तो कभी चाणक्य के चेहरे पर। शायद वे सब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब महाराज इस ब्राह्मण को मौत का हुक्म सुनाते हैं। चारों ओर भयानक खामोशी छाई रही। चाणक्य क्रोध में पांव पटकते दरबार से बाहर जा रहे थे। सम्राट नंद की आंख में से क्रोध तो जैसे समाप्त हो गया था। उन्हें उस समय इतिहास के एक ब्राह्मण परशुराम की प्रतिज्ञा याद आ रही थी, जिसे जीवन भर कंधे पर कुल्हाड़ा, तीर, कमान, तलवार उठाकर पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश करते रहे। वही थे महान पंडित, जिन्होंने कहीं पर भी तो अपना राज्य नहीं बनाया। बड़े बड़े वीर राजाओं को जान से मारकर वे आगे चले गए। किसी देश के राजा न बचे और न ही किसी के धन का प्रयोग किया। उनके सामने यही एक लक्ष्य था, बदला, बदला, प्रतिशोध। ब्राह्मण जाति के इतिहास में परशुराम एक महान वीर और सबसे अधिक क्रोधी, वेगरज, विश्वासी, त्यागी, तपस्वी माने गए थे। उनके हाथों में बड़े बड़े वीर योद्धा मारे गए। और अब यह चाणक्य एक लंबी ठंडी सांस भरते हुए राजा नंद ने उस पंडित को अपने दरबार से बाहर जाते हुए देखा। उनका क्रोध तो ठंडा हो चुका था, मगर भविष्य के अंधेरे उनके आँखों के सामने नाच रहे थे। तो क्या यह इस क्रूर ब्राह्मण से हार मान ले? तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सम्राट नंदपाल हूँ, मुझे कोई मेरे ही घर में चुनौती देकर नहीं जा सकता। मैं इसे इस अपमान की सजा जरूर दूंगा। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। सम्राट के मुँह से यह सुनते ही बहुत से सैनिक उठकर उसके पीछे भागे। पास बैठी महारानी कुंचवी ने अपने पति की ओर देखकर कहा, नहीं महाराज, इसे मत रोको, यह ब्राह्मण है, दुर्बल स्त्री एवं ब्राह्मण पर हाथ उठाना किसी वीर का काम नहीं। तुम ठीक कहती हो कुंजगी, हम भी क्रोध में इतने अंधे हो गए थे कि हमें कुछ भी बुरा भला नहीं आ रहा था। यह कहते हुए सम्राट नंद अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनके पीछे महारानी कुंजकी भी चलने लगी। राजा और रानी दरबार से उठकर चले गए, किंतु उनके जाने के पश्चात आर सप्ताह बार बार यही सोच रहे थे कि चाणक पंडित की इस प्रतिज्ञा का क्या हुआ। क्या वास्तव में ही राजा नंद का विनाश होने वाला है? परशुराम और चाणक की प्रतिज्ञा में कोई अंतर नहीं। ब्राह्मण यदि कोई प्रतिज्ञा कर लेता है तो वह उसे पूरा करता है या फिर मिट जाता है। प्रतिशोध की आग सप्ताह के अंदर भी तो सुलग रही थी। राजा नंद ने उसे भी तो एक बार बंदी बना दिया था। भले ही आज उसे आजाद कर दिया गया है, मगर बदले की आग तो अब भी उसके अंदर सुलग रही थी।
अब क्या होगा? मगध नरेश ने चाणक्य का इस तरह का अपमान किया, भारी सभा में उनका ऐसा तिरस्कार। श्रोताओं, चाणक्य के इस अपमान का परिणाम क्या होता है, इसके लिए जरूर सुने किताब के पन्नों से कार्यक्रम की अगली कड़ी अगले गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और शुक्रवार सुबह 7 से 8 बजे। आज की कड़ी में श्रोताओं इतना ही, लेकिन आप बांटते रहिए अपनी कहानियां नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।